मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 27 जून 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं जिन्होंने एकेडमी की 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं पूजा आगरा उत्तर प्रदेश से, ज्योत्सना भारती भागलपुर बिहार से, श्वेता भारती इनका गांव है जाना जिला नालंदा बिहार से, बीरेश कुमार गया बिहार से, पुरुषोत्तम निषाद आपका गांव है शुक्लागंज जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से, आशीष कुमार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, साधना वर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से, सौम्या गौड़ आपका गांव है गोविंदपुर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से, हृदेश सिंह ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अंकित सक्सेना आपका गांव है शाहबाद जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से, राहुल मिश्रा गांव शाहबाद जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से, माधव मुंद्रा उज्जैन मध्य प्रदेश से, अर्जुन कुमार आपका गांव है हरिपुर जिला अररिया से, मेघा सिन्हा गिरिडीह झारखंड से, मनीष कुमार आपका गांव है चांदचौर पचपेका जिला समस्तीपुर बिहार से, पायल खत्री उदयपुर राजस्थान से, और उदयपुर राजस्थान से ही हैं गौरव मेघवाल। फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय में मैं आपसे प्लास्टिक कचरे पर बात करना चाहूंगा, लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। आपने न्यूज सुना होगा, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी तक आप इकोनॉमिक के बारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह लीजिए जो हमारा रहा है अब तक उसके बारे में कुछ दिनों तक लगातार लेक्चर सुन रहे थे। मित्रों मैंने ये प्रयोग किया था, और सच मानिए प्रयोग भी नहीं इस तरीके से आप इसे कह सकते हैं, ये कह लीजिए कि मैंने आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। उदाहरण किस रूप में कि किस तरीके से आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद उसमें से कैसे आपको मुख्य बिंदुओं को नोट कर लेना चाहिए, और जब आप मुख्य बिंदुओं को नोट करते हैं तो आपके ध्यान में हमेशा दो बातें रहनी चाहिए। पहला तो यह है कि उस टॉपिक के बेसिक्स आपके सामने क्लियर होते चले जाएं, और दूसरा यह कि वो कंटेंट से युक्त हों, क्योंकि अगर तथ्य नहीं होंगे तो फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर कर पाना मुश्किल होता है। तथ्य इस मायने में कि आपने देखा कि अगर मैं आपको गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी के बारे में बता रहा हूं, कुछ एक्ट के बारे में बता रहा हूं, किसी नीति के बारे में बता रहा हूं, तो मैं एक फैक्ट भी उसके साथ साथ देने की कोशिश करता था कि ये रेगुलेशन है, ये एक्ट है, इस समय बना है। तो होता क्या है कि अगर आप इस तरीके से अपनी बात को तथ्यपूर्ण तरीके से कह देते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है। मित्रों मैंने एक बात आप लोगों से कही थी, अर्ज भी किया था, और मुझे यकीन है कि आप सब उसका पालन भी करेंगे कि खासकर इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित मेरे लेक्चर्स के साथ आप लोगों ने जो वक्त गुजारा है जो कल समाप्त हो चुका है, अब आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति आजादी के बाद से लेकर के ग्लोबलाइजेशन तक के दौर में रहा है वो आपको अब कैसा लग रहा है। क्या आपकी समझ में सारी चीजें आ गई हैं, पूरा परिदृश्य स्पष्ट हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह कि क्या यह सब स्पष्ट होने के बाद अब यदि आप वर्तमान में जो आर्थिक निबंध क्या आप कह लीजिए, आर्थिक लेख जो आप पढ़ रहे हैं अखबारों में या समाचार सुन रहे हैं या अखबारों में ही उससे संबंधित समाचार पढ़ रहे हैं, तो क्या उनके पढ़ने सुनने में आपको कोई आसानी महसूस हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पकड़ अपेक्षाकृत ज्यादा बन गई है, प्लीज इसके बारे में आप मुझे बताएं। अब आज से हम लोग बकायदे जो करंट अफेयर्स पर बेस्ड हमारा पुराना पैटर्न था उसी को ही फॉलो करेंगे, और मित्रों उसी के तहत अब मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं। रेडियो न्यूज कल की आपने सुनी होगी, उसमें बकायदे प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिले की चर्चा की, आकांक्षी जिले जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। दो साल पहले प्री एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देखिए आपको इसी तरह से अपने लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सेलेक्ट करने होंगे। तो अब आपको चाहिए क्या कि थोड़ा सा आकांक्षी जिलों के बारे में आप पढ़ लें, देख लें, एक नजर मार लें। अखबारों में तो आपको ये बातें मिलेंगी नहीं क्योंकि अखबारों का ये काम नहीं है, ये काम है किताबों का, या आप नेट पर चले जाइए, वहां आपको आकांक्षी जिलों के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। और ये लगातार करते रहना चाहिए। मान लीजिए कि अभी आपने पढ़ लिया है कि 2-3 महीने के बाद फिर से किसी संदर्भ में आकांक्षी जिले की चर्चा हो जाती है, तो आप ये मत सोचिए कि अरे अरे हमने तो समय पढ़ लिया था तो अब इसके बारे में क्या पढ़ना। नहीं, आपको चाहिए कि फिर आपको अवसर मिला है और आप इसे फिर से देखें, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन करने से वो चीजें आपके दिमाग में बहुत मजबूत होती चली जाती हैं और उसके बारे में स्पष्टता भी आती चली जाती है। जैसे आकांक्षी जिले के बारे में जब आप देखेंगे तो पता लगेगा कि नीति आयोग ने एक इंडेक्स बनाया था और उसमें इंडेक्स में उन्होंने कुछ तथ्य रखे थे, 49 चीजें आइडेंटिफाई की थी। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई आपका स्टेट है, ठीक है, आप अपने स्टेट को देखिए, मान लीजिए कि उस स्टेट में 40 जिले हैं, तो आप पाएंगे कि उन 40 जिलों में कुछ जिले तो बहुत एडवांस है, काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जिले अभी भी बहुत ज्यादा गरीब हैं, स्थितियां वहां की बेहतर नहीं है। तो एक ही स्टेट में ये आपको दो रूप जिलों के दिखाई दे रहे हैं, तो नीति आयोग ने कहा कि भाई ये जो जिले पिछड़ गए हैं, इन पिछड़े हुए जिलों पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि ये समान स्थिति में पहुंच सके। तो उन्होंने इसके लिए 49 तरह के इंडेक्स बनाए पॉइंट, जैसे कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, पोषण की क्या स्थिति है, शिक्षा कैसी है, वहां कृषि की स्थिति, सिंचाई के साधन क्या हैं, वित्तीय समावेशन कैसा है, कौशल विकास के लिए जो बुनियादी ढांचे होने चाहिए ये सब कैसे हैं। तो इसको लेकर के उन्होंने बकायदे 49 संकेतक बनाए और उसके आधार पर जब एनालाइज किया तो उन्हें हमारे देश के 115 जिले ऐसे लगे जो अभी पिछड़े हुए हैं। तो अब इस पर गवर्नमेंट अलग तरीके से फोकस कर रही है और इन्हें ही उन्होंने कहा है आकांक्षी जिले। बस इतना आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त होगा। फिर देखिए कि जब आप इतना जान लेते हैं तो जब अब अखबारों में आकांक्षी जिलों के बारे में कुछ भी आएगा तो आपका ध्यान जाएगा कि नहीं नहीं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहिए। मित्रों, न्यूज में ही आपने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी, अब जबकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, डेफिनेटली वो जापान पहुंच गए हैं। जापान के ओसाका में G20 देशों की बैठक होने वाली है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक के बारे में इस पर हम लोग बात करेंगे। कुछ दिनों पहले आपको ध्यान होगा कि मैंने इसकी जो मूलभूत बातें हैं वो आपको बताई भी थी और एक उसी न्यूज में इंपॉर्टेंट खबर थी कि 2022 में भारत इसकी मेजबानी करेगा, यानी कि G20 का जो सम्मेलन होगा वो भारत में होगा 2022 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो एक और भी महत्वपूर्ण खबर थी और वो थी कि जो सुरक्षा परिषद है, जिसमें आपके जो यूएनओ है उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं जिनको वीटो पावर है, आप जानते हैं, उन्हें P5 भी कहा जाता है और Big 5 भी कहा जाता है, लेकिन 10 उनके अस्थायी सदस्य होते हैं जो थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो भारत को अभी उसकी अस्थायी सदस्यता के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है और भारत इसका अस्थायी सदस्य बन जाएगा ऐसा लगता है। तो ये छोटी सी खबर है क्योंकि भारत तो इसके परमानेंट मेंबर के लिए कोशिश कर रहा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है सिविल सर्विस में, उस पर उसके बारे में पूछ भी लिया जाता है। मित्रों, खबर तो महत्वपूर्ण बस इतनी ही थी। आज आपको जो करेंट कंटेंट प्रोवाइड किया गया है उसका शीर्षक है सुरक्षा की पहली पंक्ति की मजबूती। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लेख छपा था, प्रकाश सिंह जी का ये लेख है। प्रकाश सिंह IPS ऑफिसर रहे हैं, पुलिस सुरक्षा पर अक्सर आपको इनके लेख पढ़ने को मिलते होंगे। चूंकि ये खुद उस सर्विस में रहे हैं तो उसकी कमजोरियों को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी आवश्यकताओं को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहां सुरक्षा की पहली पंक्ति से उनका मतलब है पुलिस, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी आपके बकायदे सिलेबस में है। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी भी उसमें आता है और इंटरनल सिक्योरिटी में पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आप इस लेख को एक तरह से पुलिस सुधार के रूप में भी ले सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है और आपको इस ध्यान से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं जो प्लास्टिक का जो कचरा इकट्ठा हो रहा है उसके ऊपर। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने इस टॉपिक को चुना क्यों है। आज उस पर लेख भी हैं, आपको दैनिक भास्कर में उस पर लेख पढ़ने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट लेख है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर लेख लिखा है और इसके लेख लिखने का कारण यह हुआ, देखिए कोई ना कोई कारण होता है, ओकेजन होता है कि अभी G20 देशों की एनवायरमेंटल मीटिंग हुई थी 16 जून को, G20 की, खासकर वो पर्यावरण के संदर्भ में थी और उसमें खासकर समुद्रों में जो प्लास्टिक फैल रहा है उस पर बातचीत होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई हल नहीं निकल सका। तो चूंकि ये घटना घटित हो गई थी तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी उस पर लेख लिखा है और बहुत अच्छा लेख है, आप उसे पढ़िएगा। इसका मैं आपको हिंदी वर्जन भी प्रोवाइड करूंगा। और एक बहुत अच्छा लेख दैनिक भास्कर में भी छपा है जो वेद प्रताप वैदिक जी का है और यह लेख भी मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। यह लेख इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप अनसॉल्व्ड पेपर उठाकर देखते हैं तो आपको पता लगता है कि इस तरह के टॉपिक्स पर सामान्य तौर पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर 2018 का आप मेंस का पेपर उठा करके देखिए, जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर। उस थर्ड पेपर में एक क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। निरंतर उत्पन्न किए जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्राओं का निस्तारण करने में क्या क्या बाधाएं हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? 150 शब्दों में लिखना है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स इन डिस्पोजिंग द ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ डिस्चार्ज्ड सॉलिड वेस्ट्स व्हिच आर कंटिन्यूअसली बीइंग जनरेटेड? हाउ डू वी रिमूव सेफली द टॉक्सिक वेस्ट दैट हैव बीन एक्युमुलेटिंग इन आवर हैबिटेबल एनवायरमेंट? सीधी सी बात है कि यहां अवशिष्ट कचरों की बात कर रहे हैं, यहां हम प्लास्टिक कचरे की बात कर रहे हैं। बात तो वही हो गई, और सच पूछे तो जो अवशिष्ट कचरा होता है, जो जहरीला होता है, वो प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन ये टॉपिक विशेषकर प्लास्टिक के ऊपर ही है। और खासकर जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल को पढ़ेंगे तो वो समुद्र में जो प्लास्टिक फेंके जा रहे हैं उनको लेकर के है, और वेद प्रताप वैदिक जी का पढ़ेंगे तो जो हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग जो बढ़ गया है उसको लेकर के है। अब आप देखिए, मैं इस विषय पर तो बात नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि समय नहीं बचा है, लेकिन मैं आपको इस विषय का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता हूं कि जब आप इस पर कोई भी आर्टिकल पढ़ें या कोई टॉपिक किसी किताब में पढ़ें तो आपको चाहिए कि इस स्ट्रक्चर के तहत आप अपने नोट्स तैयार कर लें। पहला तो यह है कि इसके ये कहां कहां जनरेट हो रहा है, किन किन क्षेत्रों में प्लास्टिक की उपयोगिता बढ़ती जा रही है, नंबर वन। इसके बाद फिर आप उसके सेकेंड एस्पेक्ट में आए कि इसकी उपयोगिता क्या कुछ है। देखिए, अब जहां प्लास्टिक जिस लेवल पर पहुंच गया है तो भारत का ही ले लीजिए, बकायदे डेटा है कि 45 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है, इससे इतनी पूंजी लगी हुई है। तो अगर आप प्लास्टिक के उत्पादन को रोक देंगे तो 45 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो आपको इस पॉइंट को भी देखना है, ये हमारे लिए सुविधाजनक है। तो इसके क्या प्लस पॉइंट है इनके फेवर में, और फिर निगेटिव वाले में देखिए कि क्या है। जब आप निगेटिव वाले में देखेंगे तो अलग अलग आस्पेक्ट को देखिए कि कैसे इससे समुद्री पानी जहरीला हो रहा है, समुद्री जीव मर रहे हैं, कैसे हमारे हेल्थ पर बड़ा इसका निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, कैंसर की बीमारियां इसी वजह से बढ़ रही हैं, कैसे जो प्लास्टिक अगर जमीन में चला जाए, फेंक दिया जाए, तो इसको नष्ट होने में 800 से 1000 साल लग जाते हैं। तो इस तरह के जो अलग अलग क्षेत्रों के पॉइंट हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों के पॉइंट्स नोट करते चले जाइए। इसके बाद फिर आगे आइए कि इसे बंद करना, ये जो बाधाएं की जो बात अभी मैंने प्रश्न में की कि हम इसे इस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा कि नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। उस पर आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बकायदे उनके लेख को ही आधार बना करके सब हेडलाइन में ही दे दिया है कि इसके लिए जो प्लास्टिक जो पिकर्स होते हैं, जो उनको इकट्ठा करते हैं, उनको मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाए, मतलब वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए, और इन्वायरमेंटल टैक्स लगाया जाए प्लास्टिक पर, तो इसके उत्पादन पर शायद थोड़ा नियंत्रण लग सके। उन्होंने अपनी तरफ से दो उपाय सुझा दिए, आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और उपाय सुझा दिया जाएगा। जब आप हिंदी का आर्टिकल पढ़ेंगे वेद प्रताप वैदिक जी का, तो उन्होंने अपने ढंग से सुझाया है कि लोग इसे जन आंदोलन में बदल दें, जो प्रतिबंध के कारण जो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे उन बेरोजगारों को कुछ दूसरा काम उपलब्ध करा दिया जाए। तो उन्होंने अपने ढंग से अपनी बात रखिए। तो इस तरह से आपको इन दोनों आर्टिकल के आधार पर बकायदे 5-7 ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, और आपका एक आर्टिकल अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सब देख लेंगे। तो अब इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।